أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب آئی ایم شیور کہ آخری دو سیشنز خود جب آپ نے سنے ہوں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا احساس ہوا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کس طرح شیطان نے ان کو فریب دیا. البتہ ہم نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ کس طرح شیطان نے ان کو فریب دیا ہے یا کس طرح شیطان نے ان کے وجود میں انفلٹریٹ کیا ہے، نفوذ کیا ہے. ہم نے ابھی تک اس کی بات نہیں کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں کل بات کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے اس درخت ممنوعہ سے تناول کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا. آج اسی ٹاپک کو ہم مزید الیبوریٹ کریں گے، لیکن دوبارہ اس ٹائم لائن آف ایونٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور ایک اوور ویو اس قصے کے بارے میں ایک اوور ویو ہم دوبارہ پیدا کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں پر ہیں، اس قصے میں کہاں پر ہیں، اور انسان اپنی خلقت کا کون سا مرحلہ یہاں پر طے کر رہا ہے، ہم کہاں کس مرحلے میں پہنچے ہیں. دیکھیں، اگر ہم قصہ حضرت آدم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کو کہ قصے کو ڈیوائڈ کریں مختلف کیٹیگریز میں ایونٹس کے اعتبار سے جو مختلف واقعات پیش آئے از ابتدائی خلقت سے لے کر زمین میں آنے تک، تو یہ نام اور یہ فہرست بن سکتی ہے. ایک، سب سے پہلے خلقت آدم علیہ السلام، یہ سب سے پہلا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد تعلیم اسما حضرت آدم علیہ السلام کو، وعلم آدم الاسماء کلہا، ٹھیک ہے کہ خداوند متعال نے تعلیم اسما دی حضرت آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد ملائکہ نے سجدہ کیا خدا کے حکم کے بعد، اور اس کے بعد تمرد شیطان پیش آیا، یعنی شیطان نے انکار کیا سجدے سے، اور پھر خطاب آیا شیطان کو حبوت کا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اور پھر خداوند نے فرمایا کہ انکا رجیم، تو رجیم ہے. اور پھر اس کے بعد ہم لاسٹ یہی پہنچے تھے لاسٹ سیشن میں آئی تھنک سو، کہ خداوند نے خطاب کیا اور حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ جائیں بہشت میں ساکن ہو جائیں، رہائش اختیار کریں وہاں پر. اور اس کے بعد شجرہ ممنوعہ سے حضرت آدم نے تناول کیا شیطان کے وسوسے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد خطاب آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حبوت کا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا حبوت شیطان، یعنی شیطان کو پہلے حبوت کا خطاب آیا تھا، اور اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو حبوت کا خطاب آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر آن. اور حبوت آدم یعنی کیا، یعنی تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ اور زمین پہ چلے جاؤ، اور وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے زمین میں. اب فی الحال اپنے آپ کو آپ ہولڈ آن کر کے رکھیں کہ حبوت شیطان آیا، یعنی حبوت شیطان اور حبوت آدم میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یعنی اگر خداوند متعال حضرت آدم علیہ السلام کو حبوت کا خطاب کر رہا ہے تو یہ ڈفرینٹ ہے فرام حبوت شیطان. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. ہم یہاں پہنچے تھے کہ چونکہ کل میں نے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، دو باتیں کی تھی. ٹھیک ہے، اس اور اس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ ٹائم لائن آف ایونٹس دوبارہ ایک ریویو کیا ہے اور ایک اوور ویو پیش کیا آپ کی خدمت میں. وہ بات یہ تھی کہ میں نے کل کہا تھا کہ جنت میں آنے سے پہلے خلقت کے تمام مراحل طے ہو چکے تھے، یہ میں نے کل کہا تھا اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، वो पॉइंट ये कि खिलकत के तमाम मराहिल जन्नत में आने से तय हुए हैं, लेकिन कौन से मराहिल खिलकत के तय हुए हैं? तमाम के तमाम, वो पार्ट वन ऑफ द खिलकत तय हुए हैं। यानी अगर हम इन तमाम मराहिल खिलकत को देखें, मैं क्यों मराहिल खिलकत कह रहा हूं, क्योंकि ये सब खिलकत आदम, तालीम असमा, सजदा मलाइका, तमरुद शैतान, हुबूत शैतान, जन्नत में आना, शजर ममनुआ से तनावल करना, हुबूत आदम और जमीन में जिंदगी शुरू करना, ये सब खिलकत का हिस्सा है। यानी जमीन में आने तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान कामिल की खिलकत का प्रोसेस जारी है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जन्नत में आने से पहले और एक जन्नत में आने के बाद। जन्नत में आने से पहले क्या प्रोसेस तय हुआ? हजरत आदम की खिलकत हुई, बॉडी फॉर्म हुई, रूह फॉर्म हुई, उसके बाद तालीम असमा, सजदे मलाइका, शैतान का इनकार करना, ठीक है, और हुबूत शैतान भी खिलकत आदम का एक मरहला है। ठीक है, अगर आप गौर करें, मैंने ये बात की थी सही है कि जब शैतान ने इनकार किया था और हुबूद शैतान हुआ, तो यहां पर दो रास्ते वजूद में आए थे। कौन सा पहले, कौन सा रास्ता वजूद में, कौन सा रास्ता ऑलरेडी फॉर्म हुआ हुआ था इन तमाम वाकयात से पहले, खिलकत आदम से पहले? खत हिदायत, हिदायत का रास्ता, कमाल की जानेब रास्ता पहले भी मौजूद था, लेकिन शैतान के इनकार करने के बाद अब हिदायत के रास्ते के साथ साथ गुमराही और जलालत का रास्ता भी अब वजूद में आ जाता है। इसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान के वजूद में हुब और बुग्ज दोनों चीजें रखी गई हैं। ठीक है, बुराइयों की निस्बत बुग्ज और अच्छाइयों की तरफ हुब और मोहब्बत। अच्छा, ये पार्ट वन था। अब जन्नत में आने के बाद जब खिताब हुआ कि अब जाओ उस कुन साकिन हो जाओ, तो यहां से पार्ट टू ऑफ द प्रोसेस शुरू होता है। अब हम यहां पर हैं इस पार्ट टू के अंदर, और एक और बात कल मैंने पेश की थी आपकी खिदमत में, वो ये कि जमीन और दुनिया में क्या फर्क है, दुनिया और अर्व, अर्व यानी जमीन। और ये कहा था कि इमाम अलैहिस्सलाम, आइमा अलैहिस्सलाम की रिवायात में है कि जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था वो दुनियावी जन्नत में से थी। और मैंने फिर आपसे ये कहा था कि जमीनी जन्नत नहीं थी, ठीक है, दुनियावी जन्नत थी। अब दुनिया और जमीन के दरमियान एक फर्क है, ठीक है, इसका फर्क डीप है, अलबत्ता इतना पेचीदा नहीं है, सिर्फ मैं 1 या 2 मिनट में आपको ब्रीफ करके बता दूं। वो ये कि जमीन जिसको अरेबिक में अर्व कहा जाता है, वही मौजूद खारिजी है, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो लैंड है और ये जो रोड्स हैं, ये सब जमीन है, ये सब जमीन है जो आपको अभी नजर आ रही है अपने वजूद के बाहर, ठीक है। लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया जमीन नहीं है, दुनिया इस फिजिकल जमीन को नहीं कहते। किस चीज को कहते हैं दुनिया? दुनिया यानी इंसान का ताल्लुक जमीन से है, दुनिया यानी चीज, इंसान का ताल्लुक जमीन से, एक कनेक्शन, एक इर्तिबात जमीन के साथ, और जमीन में तमाम जो उमूर हैं, तमाम जो इंसान के रवाबित हैं, ठीक है, इन सब को दुनिया कहा जाता है। बस दुनिया यानी जमीन से ताल्लुक। अलबत्ता एक और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये कि अलबत्ता मुहिम है कि ये जो अर्व है अरबिक में, हम जिसको फारसी में और उर्दू में जमीन कहते हैं, फकत जमीन को नहीं कहते। जमीन इज नॉट ओनली दिस फिजिकल थिंग, जमीन दो चीजों का नाम है, जमीन दो चीजों का नाम है, एक ये जो हमें ये नजर आ रहा है अपनी अपने वजूद से बाहर, इसको जमीन कहते हैं, प्लस फलसफी और फिलोसफिकली, फिलोसफिकल एतबार से जमीन उस मादी इस्तेदाद को कहते हैं, मटीरियलिस्टिक केपेबिलिटीज को कहते हैं, सही है। इंसान जो कि यहां भेजा जाता है और दुनिया के अंदर, जमीन के अंदर, यहां पर दुनिया से मुराद ये है कि इंसान का ताल्लुक इस जमीन से, इस कैपेबिलिटी से, ठीक है। इसी वजह से आप देखें कुरान के अंदर ये आयत आपने कई दफा सुनी होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हयात दुनिया, बेशक हयात दुनिया लाइबुन व लहवुन, सही है, जिसका सिंपल तर्जुमा खेलकूद जो है वो किया जाता है। अब ये जो खेलकूद है, खुदावंद मुतआल ने क्या ताबीर इस्तेमाल की है, इन्नल हयात दुनिया, दुनिया यानी बदन से ताल्लुक, जमीन से ताल्लुक, ठीक है। वरना खुद जमीन, खुद ये जो आपको जमीन नजर आ रही है अपने बाहर, ये खेलकूद नहीं है, बल्कि खेलकूद क्या है, दुनिया है, सही। इंशाल्लाह आई होप ये वाजे हो जाए, अलबत्ता इतना पेचीदा नहीं है, सिर्फ इसको लिखने की जरूरत है और लिखकर उसके ऊपर निगाह करके गौर व फिक्र की जरूरत है, तो इंसान के लिए बात वाजे हो जाती है। अब यहां पर कहा ना कि जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्ला अलैहा को भेजा गया वो दुनिया की जन्नत थी, सही है, यानी वो जन्नत, सही है, और इसके अंदर वो दरख्त, वो शजरे ममनुआ जिसका ताल्लुक दुनिया से है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने मराहिल जो बिल्कुल वाजे बताए, अराउंड 8 to 10 मराहिल ऑफ खिलकत, यानी खिलकत, खिलकत आदम, तालीम असमा, सजदा मलाइका से लेकर आखिर तक जमीन, यानी जमीन पे आने तक, यहां तक जो भी मराहिल आप देखें, मैंने आपको कल बात कही थी कि ये सब इंसान शनासी के नुकात हैं, यानी ये मेरी और आपकी क्रिएशन और खिलकत के सेंट्रल पॉइंट्स हैं, मरकजी नुकात हैं, ये इंसान शनासी के पीक मतालिब और इवेंट्स हैं, ये इंसान शनासी के पीक प्रोसेस हैं, ये तमाम के तमाम, मलाइका का सजदा करना, शजरे ममनुआ से जो है वो मना करना कि नहीं खाओ, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन मराहिल को नहीं पहचानेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी खिलकत कैसे हुई है। और कल ये बात कही थी कि किस्सा ये हजरत आदम दर हकीकत हम सब का किस्सा है, क्यों, क्योंकि खिलकत इंसान का किस्सा है ये, और हम इंसान हैं। और ये बात फिर कही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को जब खुदावंद मुतआल ने जन्नत में भेजा तो दर हकीकत आदम को बदन की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी था, क्यों, इसकी वजह यह है कि खुदावंद ने, इसके दो जवाब हो सकते हैं, जवाब हैं बल्कि, हो सकते नहीं बल्कि इसके दो जवाब हैं। एक तो ये खुदावंद मुतआल ने हजरत आदम की रूह भी बनाई और बदन भी, इंसान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड सोल, ठीक है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में वारिद हुए तो वो इस कदर जज्बा इलाही में गर्क थे, मेल्ट डाउन हो चुके थे कि उनको असलन बदन की तरफ तवज्जो ही नहीं थी, असलन तवज्जो नहीं थी, असलन इसी वजह से जन्नत में भूख नहीं होती लेकिन खाना होता है, प्यास नहीं होती लेकिन पीना होता है, क्यों, क्योंकि इंसान गर्क है जन्नत के अंदर, बॉडीली अहकाम, अहकाम बदन जन्नत के अंदर लागू नहीं होते, अगरचे बदन मौजूद है लेकिन अहकाम उस यानी जिससे हम दुनिया के अंदर एहसास करते हैं भूख और प्यास का, और आपको जिनीन की भी मिसाल दी थी कि जिस तरह जिनीन रहमे मादर के अंदर भूख का एहसास नहीं करता लेकिन गजा को तनावुल करता है, क्यों, क्योंकि वो असलन उस मरहले खिलकत में है और उस जज्बा मादरी के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं अपने आप के अंदर वो गर्क है, सही है। अब यहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जज्बा इलाही में मशगूल हैं, तवज्जो नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, देखें ये तो कंफर्म बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर आना है, देयर इज नो वे ही हैज टू कम, क्यों, अगर आपको याद हो सबसे पहली बात जो खुदावंद मुतआल ने मलाइका के साथ की थी ठीक है, आज की जबान में शहर की थी, सही है, वो क्या थी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, फिल अर्ज खलीफा, यानी ये खलीफा हमने बनाया है, जाल किया है जमीन में, अगरचे सिर्फ जमीन के लिए नहीं है बल्कि तमाम अवाले में वजूदे के लिए, लेकिन फिल अर्ज यानी इस खलीफा को जमीन में आना है और जमीन में बादशाहत करनी है, हुकूमत करनी है, जमीन में इस खलीफा को इमामत करनी है, जमीन में इस खलीफा को अस्माए खुदा और अस्माए इलाही को तजल्ली बख्शनी है। ये खलीफा का काम है, जमीन में ये काम होना है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अब हतमन जमीन में आना है, उसके लिए ही हैज टू अंडरगो दिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? तालीम अस्मा, मलाइका का सजदा हो करना, बहिश्त में साकिन होना, शजरे ममनुआ से मना होना और उसको तनावुल करना, और शजरा से तनावुल करने के बाद बदन का उरियान होना और उसके बाद जमीन में इस्तिकरार पाना, सुकून पाना, साकिन होना। ये तमाम प्रोसेस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तय करना है जमीन में आने के लिए। ठीक है, अब मुमकिन है कोई कहे कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस शजरा से ना खाते फिर तो वो जमीन में नहीं आते, क्योंकि बदन उरियान नहीं होता, तवज्जो पे बदन मुहक्कक नहीं होती। मुमकिन है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर ये हो जाता, जिस तरह अगर ये हम फर्ज करें, अगर ये हो जाता शजरा से वो ना खाते, फिर भी खुदावंद मुतआल को हजरत आदम उस जमीन में भेजना जरूरी है। असातीर ये फरमाते हैं कि अगर ये हो जाता शजरा से ना खाते, शैतान के वसवसे में नहीं आते, तो खुदा किसी और रास्ते से हजरत आदम को जमीन में भेजता। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह बात क्लियर है। अब यहां पर उस वसवसे के बारे में हम मजीद देखते हैं कि आया सूरह आराफ की आयत नंबर 22 में ये आया है कि फदल्लाहुमा बिगुरूरिन फलम्मा ज़ाक़ अश्शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा, बस शैतान ने अपने मकर व फरेब से उन दोनों को उनके मकाम और मंजिलत से गिरा दिया। कैसे? उनको शजरा से नजदीक कर कर करके। ठीक है, अब ये जो शैतान ने उनको वसवसा किया और उनके वजूद में इन्फिल्ट्रेट किया, कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज नहीं, इसके नतीजे में क्या हुआ? जब शजरा से खा लिया, तनावुल किया, नतीजे में सौआतुहुमा, ये इसके बारे में बात करनी है अभी, बदत लहुमा सौआतुहुमा, सौआत का जुहूर हुआ आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के सौआत जाहिर हो गए। यानी क्या सौआत जाहिर हो गए? यानी उनके हैवानी, उनका हैवानी पहलू जाहिर हो गया। और हैवानी पहलू कहाँ होता है? उसके इंसान के बदन में, इंसान का बदन यानी उसका हैवानी पहलू, उसका एनिमलिस्टिक पहलू। ठीक है, अब शजरा के खाने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बदन की तरफ तवज्जो हो गई, यानी कैसा तवज्जो हुई? उसके खाने से जज्बा इलाही से थोड़ा बाहर आए और देखा कि मेरा बदन भी है। जैसे तवज्जो हुई, जैसे तवज्जो हुई, ये सेकंड्स का मामला नहीं है, उससे भी कम है। हम ये मत समझे कि पहले उन्होंने दरख्त खाया, फिर आफ्टर 5 मिनट्स बदन की तरफ तवज्जो हुई, फिर आफ्टर 5 मिनट्स उनका बदन उरियान हुआ, नहीं, ऐसा नहीं था। ये तमाम एक ही आन में हुआ है, एक ही टाइम में ये सब हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम टाइम वाले लोग हैं, सही है, क्योंकि हम दुनिया में हैं, दुनिया में टाइम है, जमान है, ठीक है, लेकिन दुनिया से बाहर जब इंसान की मौत होती है, मौत के बाद जमान नहीं है, अगरचे आलम बरजख में जमान है, लेकिन कयामत में असलन जमान नहीं है। अगरचे एक और अगरचे मैं कह दूं, वो ये कि बरजख में जमान है, टाइम है, लेकिन वो जमान नहीं है जो दुनिया वाला जमान है। ओके, वो टाइम नहीं है बरजख में जो दुनिया के अंदर टाइम होता है। ठीक है, सही। अब ये जो हुआ, शजरा से खाया, फिर जुहूर सौआत हुआ, अपने बदनी पहलू की तरफ तवज्जो हुई, ये सब एक ही आन में हुआ है। इसी वजह से मैंने कहा जैसे, जैसे ये काम हुआ फौरन ये काम हो गया, ठीक है, अपने हैवानी पहलू की तरफ तवज्जो हुई, ठीक है, नतीजे में क्या हुआ, बदन उरियान हो गया। अगरचे ये जो मैं कह रहा हूं तवज्जो ही, ये हैवानी पहलू पहले भी था, सही है, ये याद, ये आप ना भूलें, सही है, ये हैवानी पहलू पहले भी मौजूद था, बदन पहले भी मौजूद था, सही, लेकिन तवज्जो अब आई है और नतीजे में बदन के जो उयूब थे, बदन के जो खास अंदाम है जिसको ऐब बदन कहा जाता है, वो सामने आ गए, वो जुहूर उनका जाहिर होना शुरू हुआ, ठीक है, और उसकी तरफ तवज्जो हुई। क्योंकि क्यों ये काम हुआ, क्योंकि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब वसवसा किया, ठीक है, और मकर फरेब से उसने काम लिया, तो उसने अपने इस मकर फरेब और हीले के अंदर जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग में उसने ये कोशिश की कि हजरत आदम को, हजरत आदम के वजूद में उनका बदन ज्यादा नुमाया किया जाए बजाय इसके कि उनकी हकीकत को नुमाया किया जाए। शैतान जानता था कि हजरत आदम की हकीकत उनका बदन नहीं है बल्कि उनकी रूह है, उनका नफ्स है, लेकिन हजरत आदम को इस तरह वसवसा किया कि हजरत आदम ये समझने लगे, अच्छा माई बॉडी इज माई हकीकत, ठीक है, और फिर ये काम हुआ और फिर जुहूर सौआत हुए। बस बदन की तरफ तवज्जो, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, सही है, एक न्यू बॉर्न बेबी जब बॉर्न होती है, पैदा होती है, विलादत होती है उसकी, असलन उसकी तवज्जो बदन की तरफ नहीं होती है, होती है नहीं होती है, सही है, उसका सारा हम गम उसकी गजा है, रोना धोना है, और उसको दूध मिलना चाहिए, जब भी उसको भूख लगे फौरन उसको दूध पिलाया जाए, ये सारी चीजें, बदन की तरफ तवज्जो नहीं है। अगरचे बदनी अहकाम की तरफ तवज्जो है उसकी, जैसे उसको भूख लगती फौरन जो है वो, अब अपने भूख लगती है उसको एहसास ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन रहम मादर में उसको एहसास भूख का नहीं था, अगरचे भूख जो है वो, अगर उसको, अगरचे उसको गजा दी जा रही थी रहम मादर में, लेकिन दुनिया में आने के बाद ऐसा ऐसा भूख का भी एहसास हो रहा है, और जैसे भूख का एहसास हो रहा है फौरन उसको जवाब दिया जा रहा है और उसको गजा फराहम की जा रही है, लेकिन लेकिन किस चीज की तरफ तवज्जो अब भी नहीं है, विलादत के बाद भी अपने बदन के उयूब की तरफ तवज्जो नहीं है। उसको जब पैम्पर कराया जाता है, 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, हत्ता 2-3 साल का भी होता है या 2.5 साल का, तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बगैर, वो सिर्फ पैम्पर में घर, अपने घर में घूमता रहा, उसको कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन जब 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, वो उसकी डिपेंड्स ऑन हिज मैच्योरिटी, सेंस ऑफ मैच्योरिटी की कितनी जल्दी आगे बढ़ती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक नॉर्मल मुतवसित, एक नॉर्मल जो बच्चा होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जब वो 4-5 साल का होता है, वो हाजिर नहीं कि सबके सामने अपने कपड़े बदले, वो वॉशरूम में जाके बदलेगा या अपने कमरे में जाके बदलेगा, वो कोशिश करके मेरी बॉडी के उयूब और अंदाम नुमाया ना हो। बाज बच्चे हत्ता यहां तक हसास होते हैं, बाज ऐसे होते हैं, वो नहीं, उनको नहीं पसंद है कि वो हाफ स्लीव का शर्ट पहने, उनको नहीं पसंद है उनका हाथ भी जाहिर, उनको फुल स्लीव का शर्ट पहनना होता है। तो अब ये जो है इंसान के जो बदन के जो उयूब है, वो बच्चे के लिए भी हसास और सेंसिटिव है, ठीक है। अब एक बच्चे के लिए अगर सेंसिटिव है, तो आप मुझे बताएं, एक इंसान जो बालिग हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, जहनी तौर पे मैच्योर हो जाता है, तो वो तो पसंद नहीं करेगा कि वो बाहर गली में जो है वो उरियान होकर जाए और अपने उयूब को जाहिर करे, बदन के उयूब को। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान अपनी तबीयत को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो अपने उस खिलकत को जो उसने तय किए हैं, खिलकत को जो मराइल तय किए हैं, वो आप देखें उसी को फॉलो कर रहा है, अपनी फितरत पे बाकी है वो, क्योंकि उसको पता है अपने सबकॉन्शियस में जो मराहिल तय हुए हैं उसके खिलकत के, उसको मालूम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ है, ठीक है, जन्नत में बदन की तरफ तवज्जो हुई, उयूब बदन जाहिर हुए, फौरन अपने आप को ढापा, ठीक है, दरख्त के पत्तों से और चीज़ों से ढापा अपने आप को फौरन। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं, ये जो आजकल स्लोगन लगाया जाता जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं, सही है, इट्स माई ओन विश एंड माई ओन विल एंड माई ओन फ्रीडम, माई ओन बॉडीली फ्रीडम, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे बताएं, ये खिलकत इंसान के खिलाफ नहीं है, ये खुद इंसान के जद आला यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के खिलाफ ही ये स्लोगन नहीं है। क्योंकि जैसे उनको जन्नत में अपने बदन की तरफ तवज्जो हुई, उनका बदन उरियान हुआ, फौरन अपने आप को ढापा। ये इंसान का नेचर है, ठीक है, डिक्शनरी माने में अब नेचर है, फितरत है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, सही है। तो ये स्लोगन्स, ये सब क्या है, ये आया मुसलमान के स्लोगन से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है, औरत मार्च और ये फला ढिमकाना जिसको हम कहते हैं उर्दू में, तो दिस इज नॉट सेंसिबल, ये जो भी स्लोगन है सेंसिबल स्लोगन नहीं है, ठीक है। ये खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत के मराहिल जो हमने आपके जिक्र किए उसके बिल्कुल खिलाफ है ये स्लोगन। ओके, तो आप देखिए, अगर हम कुरानी आयात में गौर करें, दीनी मारिफ में इस्लाम ने जो अजीम मारिफ हमें बताए हैं उनमें गौर फिक्र करके आप आसानी से जो तबीई नतीजे रिजल्ट्स इंसान ले सकते हैं, वो आप आसानी से ले सकते हैं गौर फिक्र करने के बाद, जिस तरह मैंने आपके सामने एक नतीजा लिया। बस अब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्ला अलैहा जज्बा इलाही से बाहर आ गए, सही है। बाद में रिवायात में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 40 साल, मेरे जहन में 40 साल है फिलहाल, 40 साल ही है आई एम श्योर, 40 साल तौबा की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको इस वाकये के बाद हुबूत का खिताब आया, जमीन में भेजा गया, और चूंकि जमीन में भेजा गया यानी मादा मैटर, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में भेजा गया, तो उनको बहुत ही अफसोस हुआ, इस कदर वो उदास हो गए, इस कदर उन्होंने गिरिया किया कि रिवायात में है कि बाज अफराद, बाज शख्सियात, हस्तियां ऐसी हैं जिनको बुकाइन कहा जाता है, बहुत ज्यादा बुका करने वाले, बहुत ज्यादा गिरिया और जारी करने वाले, उनमें से एक शख्सियत खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि जन्नत से निकालने जाने के बाद, जमीन में बेचने के बाद उन्होंने कई साल गिरिया किया, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आएंगे बाद में, किससे ही हजरत आदम का ये बहुत ही अहम हिस्सा है, और फिर उन्होंने तौबा की, किस तरह तौबा की, और ये सारा प्रोसेस क्या है तौबे का, तौबा का इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दिस। अब अजीब एक और नतीजा ले सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन हजरत आदम एंड अस, हम जो इस वक्त दुनिया के अंदर हैं, और वो यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत के अंदर हैं। देखिए कंपैरिजन किया है, जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, जब मैं आपके सामने हजरत आदम कहूं तो आप बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जुदा ना करें, क्यों? क्योंकि वो भी इन मराहिल को तय कर रही हैं, इन्हीं खिलकत के मराहिल को तय कर रही हैं। अब ये दोनों हस्तियां के सलाम हो हमारा इनके ऊपर, जज्बा इलाही में गर गए जब जन्नत में आए थे, और शजर ममनुआ से तनावल करने से पहले खुदा के जज्बे में गर के बदन की तरफ असलन तवज्जो नहीं है, भूख का एहसास नहीं है, खाना है, भूख का एहसास नहीं है, लेकिन हम दुनिया में इस वक्त जो हम इस वक्त मौजूद हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम बजाय इसके के खुदा के जज्बे में गर्क हो, हम बदन और बदन के अहकाम में गर्क हैं। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। हम किस कदर बदन के अहकाम में गर्क हैं, किस कदर सुबह से लेकर शाम तक अपनी बॉडी को सोना, खाना, पीना, ऐश करना, मजे उड़ाना, ये सब क्या है? बदन के अहकाम नहीं है तो क्या है? रूह के अहकाम तो नहीं है ये? सो वी मस्ट थिंक अबाउट दिस। अब जब दुनिया में, सॉरी, जब बदन की तरफ तवज्जो हुई, तो बदन की तरफ तवज्जो होने का मतलब यह है कि अब सख्तियों का आगाज है, अब जहमत का आगाज है, अब हार्ड वर्क का आगाज है, अब मशक्कतों का आगाज है। کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی سختی کی زندگی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو زحمتوں میں اور مشکلات میں, مشکل میں خلق کیا ہے. اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو بدن کی طرف توجہ ہوئی تو یہاں پر خدا نے در حقیقت دو کام کیے. ایک دیکھیں, یہاں دو کام ہیں. آیت نمبر 117 آف سورہ طٰہٰ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلنا یا آدم, اے آدم, ان ھذا عدو لک, یہ تمہارا دشمن ہے, ولزوجک, اور تمہاری زوجہ کے لیے بھی دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. اب دیکھیں خدا کس طرح وارننگ دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ ابلیس تمہارے لیے, تمہاری بیوی کے لیے, زوجہ کے لیے دشمن ہے. خیال رکھنا آدم کہ یہ تمہیں جنت سے نہ نکالے, یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے, کہ اگر اس نے تمہیں جنت سے نکال دیا تو تم زحمت میں اور مشکل میں پڑ جاؤ گے. فتشقا, مشقت, سختی. لیکن ہو گیا, شجرہ سے کھایا اور جنت سے نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور نتیجے میں زحمت اور سختیاں. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں. یعنی اب کیا مطلب زحمت اور سختیاں؟ پہلے بھوک کا احساس نہیں تھا, اب بھوک بھی لگے گی. پہلے پیاس کا احساس اور تشنگی کا احساس نہیں تھا, اب تشنا بھی ہوں گے حضرت آدم. اب انسان کو تشنگی کا بھی احساس ہوگا, اب انسان کو محنت کرنی پڑے گی, مشقت اٹھانی پڑے گی, روزی کمانی پڑے گی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, حلال روزی کے لیے تگدو کرنی پڑے گی, جد و جہد کرنی پڑے گی. یہ اگرچہ دیکھیں, یہ اس کو آپ نیگیٹو انداز میں نہ لیں کہ یہ سب نیگیٹیوٹی, یہ کیا سختیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, واٹ آل دس. نہیں, یہ فضیلت بھی ہے. صحیح ہے, میں آپ کے سامنے ابھی ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواریون. صحیح ہے, حواریون. حواریون نے عیسیٰ علیہ السلام, ان کا رزق ہمیشہ آسمان سے آتا تھا, جس طرح بنی اسرائیل کا رزق, جو جس کو منو سلوا مثلا, وہ انزل علیہم المن والسلوا, کہ ان کو جتنا بھی کھانا پینا سب کچھ فری آف کاسٹ, ود آؤٹ کوکنگ, سب کچھ آسمان سے نازل ہوتا تھا بنی اسرائیل کے لیے. حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ سب کچھ آسمان سے آتا تھا, ریڈی اینڈ ریڈی ٹو ایٹ. یعنی ٹھیک ہے, اب یہاں پر حواریوں نے عیسیٰ نے ایک دن پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ, اے نبی یہ خدا, کیا ہم میں سے, کیا ہم سے بھی کوئی مقرب الی اللہ ہے؟ کیا ہم سے بھی کوئی خدا کے قریب ہے, یا صرف ہم ہی خدا کے سب سے زیادہ قریب ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے وہ سب دنیا کے اندر مفت ملتا ہے, اور سب کچھ آسمان سے ریڈی آ رہا ہے, ریڈی میڈ چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی اچھا جواب فرمایا کہ تم سے مقرب اور نزدیک خداوند وہ ہے کہ زحمت اور محنت کرتا ہے, اور اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کماتا ہے اور کھاتا ہے. اب یہ سن کر حواریون نے ریکویسٹ کی حضرت عیسیٰ سے, اب ہمیں جو ہے آسمان سے فری آف کاسٹ, بغیر محنت کے روزی نہیں چاہیے, ہم خود اپنی محنت سے اپنی روزی, حلال روزی کمائیں گے اور کھائیں گے. تو یہاں پر پھر اس دن کے بعد, اس واقعے کے بعد, حواریوں نے عیسیٰ نے کام کاج کرنا تلاش کیا, شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے, اس آج کی طرح اس زمانے میں کمپنیز تو نہیں تھیں, بینکس تو نہیں تھے کہ وہاں پر سی وی دینے جائیں گے اور جاب اپلائی کریں گے, نہیں. ٹھیک ہے, اور اے سی کے اندر جو ہے وہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے آرام سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرنا, فری لانسنگ کا اس طرح کا کام نہیں تھا اس زمانے میں. انہوں نے اب جیسے یہ احادیث میں بھی, یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں. دیکھیں احادیث نے کس قدر ائمہ معصومین علیہم السلام نے اور رجال نے, رجال یعنی راویوں نے, کس طرح یہ احادیثیں ہم تک پہنچائی ہیں. ایک تو ائمہ نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں. کیا مطلب حدیثیں بیان کی ہیں؟ یعنی یہ کہ دیکھیں قبل اسلام, ये मैं आपको बहुत एक क्लीदी एंड की पॉइंट बता रहा हूं, वो ये कि कबल अज इस्लाम जो भी तारीख हमें मिलती है ऑथेंटिक ऑथेंटिक हाँ मुस्तनद, मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात, दीगर अंबियाओं के जिंदगी के वाकयात, दीगर कौमों के जिंदगी के वाकयात, ये सब कुछ अइम्मा के कलाम में मौजूद हमें मिलता है ऑथेंटिक ऑथेंटिसिटी के साथ। सही है, अगर आपको इस्लाम से पहले अंबिया जितने भी आए हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हजरत आदम से पहले जो खिलकत के मराहिल तय हुए वहां से लेकर अब तक, यानी अब तक से मुराद बेसत नबी अकरम तक, यानी इस्लाम के जहूर से पहले जो तारीख आपको मिलती है अंबिया की, ये सब अइम्मा अलैहिस्सलाम के हजरत, ये सब अइम्मा अलैहिस्सलाम के कला में मिलती है। खैर ये तो एडिट हो जाएगा, जितनी भी तारीख आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हत्ता कबलज खिलकते आदम, ठीक है, और जो कन्वर्जेशन आपके सामने पेश की, एक तो आयात में मौजूद है उसकी तफसीलात अहादीस में, तो वहां से लेकर बेसते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक, यानी इस्लाम के जुहूर से पहले तक जो तारीख आपको अंबिया की मिलती है ऑथेंटिक विदाउट एनी डिस्टोर्शन, वो आपको अइमा अलैहिस्सलाम के कलाम में मिलती है, उनकी अहादीस में मिलती है, ऑथेंटिक आपको तारीख वहां मिलेगी। तो ये हवारियों ने ईसा को जो वाकई, ये भी अहादीस में मौजूद है, कलाम अइमा में मौजूद है, तो बस उन्होंने हजरत ईसा से रिक्वेस्ट की कि आज से हम खुद मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपनी हलाल रोजी खुद कमाएंगे। और फिर रिवायत में मिलता है कि वो जाते थे, लोगों के कपड़े धोते थे और उजरत कमाते थे, सैलरी लेते थे, ठीक है। तो देखें काम काज की कितनी अहमियत है, मेहनत की कितनी अहमियत है। अच्छा, अब अगला टॉपिक यहां पर ये कि शैतान ने, या अगरचे मैं आपको आपके सामने इशारा कर चुका हूं लेकिन थोड़ा और इसको देख लेते हैं कि शैतान ने वो कौन सा मुगालता पेश किया, कौन सा वो मुगालते का तरीका अपनाया, वो कौन सी मिसकॉन्सेप्शन उसने क्रिएट की हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में कि जिसके नतीजे में ये सारे वाकयात पेश आए, और तवज्जो में शजर ममनुआ से तनावल किया और फिर खाया उसको, एंड देन तवज्जो बदन, वो ये कि पहले भी कहा था इंसान की दो पहलू है, एक मन और एक तन, या इसको यूं भी कह सकते हैं एक मन हकीकी और एक मन गैर हकीकी। मन यानी मैं, फारसी में चूंकि इसको कहना ज्यादा आसान है इस वजह से हम इसको मन का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि मैं, अब देखो मैं हकीकी थोड़ा दुश्वार बन जाता है जबान के ऊपर इसको तलफ्फुज़ करना, लेकिन मन हकीकी कहना आसान है। अब मन हकीकी इंसान की रूह है, उसका नफ्स है, यानी नॉन बॉडीली जो इंसान के पहलू है वो उसका मन हकीकी है, ठीक है, और मन गैर हकीकी वो क्या है, इसका बदन है इंसान का। अब शैतान ने ये किया, शैतान ने ये किया कि जब आदम अले शैतान ने जब आदम अले सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को दरख्त, ठीक है, ये आयत अब मैं आपके सामने तिलावत करने वाली है, अभी तक हमने पेश नहीं की आयत, ठीक है, ये भी आयत आपके सामने आने वाली है कि वो मुगालता किया था। सही है, वो मुगालता इसके अंदर मजीद डिटेल्स मौजूद है, यानी छह माने हकीकी माने गैर हकीकी का मुगालता पेश किया, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे, आयतें कुरान करीम से सूरह ताहा की 120 है। लेकिन इससे पहले मैं एक दो पॉइंट्स आपको बता दूं, वो ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने उसके बदन की, अपने बदन की तरफ तवज्जो दिलाई कि ए आदम तेरा ये बदन, तेरा ये मन हकीकी है। सही है, अब मन हकीकी को अगर हम वाकयान देखें, अब दो ताबीरें हैं, अब दो हकीकतें हैं, अब छोड़ दें इसको, दो हकीकतें हैं दो ताबीरें, लेकिन दो लफ्ज इस्तेमाल हुए इसका, हम ये इल्मुल अखलाक और फलसफे के अंदर इसके बारे में बहस की जाती है, वो क्या है, एक है रूह एक है नफ्स। सही है, शायद मुमकिन है इसके ऊपर हम कल आ जाएं कल के सेशन में। सही है कि मसलन कुरान के अंदर ये आया कि अल्लाहु अल्लाहु यतवफा अल अनफुसा अल्लाहु यतवफा अल अनफुस, कि खुदा नफूस और नफ्स को वफात देता है, हम कहते हैं ना वफात, फलां की वफात हो गई, صحیح ہے، فلاں کا انتقال ہوا، تو یہ وفات کا لفظ توفی سے ہے، خدا نفس کی توفی کرتا ہے، اب یہ قرآن کے اندر آیا ہے. اسی طرح روح کا بھی، روح سے بھی تعبیر کی گئی. اب یہ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین روح اینڈ نفس؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اگرچہ خطبہ فدکیہ میں غالباً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دقیقاً ان تعبیرات کو استعمال کیا ہے اس توحیدی خطبے کے اندر، صحیح ہے، لیکن اجمالاً اور مختصر سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، جب موت ہوتی ہے انسان کی، تو موت کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ آپ بتائیں، موت کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ؟ موت در حقیقت نفس اور بدن کے درمیان جدائی کا نام ہے. دیٹس اٹ، سو سمپل. موت کیا ہے؟ نفس اور بدن کے درمیان جدائی. بدن کی موت ہوتی ہے، نہ کہ نفس انسان کی، نہ کہ روح انسان کی موت ہوتی ہے، صرف بدن کی موت ہوتی ہے. بس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح ہے، اس کا نفس ہے، یہ حقیقت انسان ہے. شیطان نے بدن کو، جسم کو آدم کا حقیقی من دکھایا جو کہ زوال پذیر ہے. آپ دیکھیں، لاسٹ میں بات ہوئی تھی آپ سے کہ بدن فانی ہے، بدن فنا ہو جاتا ہے، ختم، اس کا زوال افول ہو جاتا ہے بدن کا، لیکن روح اور نفس کا زوال نہیں ہوتا. اب آدم علیہ السلام جو کہ غرق تھے جذبہ الہی میں، ان کو یہ وسوسہ ڈال رہے ہیں حضرت شیطان کے بھائی تمہارا بدن تمہارا حقیقی من ہے، جبکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ بدن زوال پذیر ہے، پھر بھی یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں اب یہاں پر، اچھا خدا کی قسم کھا کر بھی یہ کام کیا ہے. اب آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، زیادہ ویٹ نہیں کرتے ہیں. کہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ بِبَخْشِد فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَال، شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ کیا اور کہا، یا آدم، شیطان کہہ رہا ہے، یا آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يُبْلَى. اس آیت میں دو لفظ کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے، ایک شجرت الخلد اور وملک لا یبلا، کہ اے آدم کیا میں تمہیں اس درخت کی طرف رہنمائی کروں کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا، اس سے تم نے تناول کیا، تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور کیا میں تمہیں اس ملک کی طرف رہنمائی کروں، اس مملکت کی طرف، اس ایسی بادشاہت کی طرف رہنمائی کروں کہ جو لا یبلا ہے. لا یبلا یعنی جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی. یعنی دو چیزوں کی نسبت حضرت آدم کو وسوسہ کیا شیطان نے، ایک ان کی جاویدانگی کی طرف، صحیح ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم کو یہ پتا کہ یہ تمہارا بدن ہے، اور اے آدم تمہارا یہ بدن زوال پذیر ہے، اب آیا تم چاہتے ہو آدم کہ تمہاری رہنمائی کروں ایسے درخت کی طرف کہ اگر اس سے تناول کیا تو تمہارا یہ بدن ہمیشہ زندہ رہے گا؟ دیکھیں کس قدر مکار ہے شیطان. ایک طرح سے حضرت آدم کو بتا رہا ہے کہ تیرا یہ بدن، تیرا یہ حقیقی من ہے جو کہ زوال پذیر ہے، ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، موت آ جائے گی اس کو. دوسری طرف سے حضرت آدم کو کہہ رہا ہے اس شجرے سے کھاؤ تاکہ تمہارا بدن ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اور تمہیں ایک ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ختم ناپذیر ہے. اور پھر شیطان نے کہا کہ میں تمہارا نصیحت اور خیر خواہ ہوں، میں قسم کھا کر کہی شیطان نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، آئی ایم یور ویل وشر، میں تمہاری خیر چاہتا ہوں آدم، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، میری بات مانو. روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے اس درخت کو کھایا، تو حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے آج تک، یہ دیکھیں جملہ حضرت آدم سلام اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے جھوٹی قسم نہیں سنی تھی، اور فرماتا ہے کہ میں نے اصلا تصور ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی مجھ سے اس طرح بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس طرح جھوٹ بولے گا قسم کھا کر، وہ بھی خدا کی قسم کھا کر. لہذا تاریخ عالم میں سب سے پہلا جھوٹ بولنے والا شیطان ہے، جھوٹ کو انوینٹ کرنے والا کون ہے؟ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. तो बस जो इंसान झूठ बोलता है वो शैतान की पैरवी में है। जो इंसान झूठ बोलता है और झूठ बोलकर पशेमान नहीं होता है और झूठ के अंदर झूठ अंदर झूठ अंदर झूठ, तो ये क्या होगा? ये शख्स विलायत खुदा से आहिस्ता आहिस्ता खारिज होगा और विलायत शैतान में आता चला जाएगा। सही है, क्योंकि शैतान का पैरोकार है। इसको हम नहीं कहेंगे, झूठे को कभी भी हम नहीं कहेंगे कि ये इमाम अली का शिया है। अगरचे हाँ, अगर सर तौबा कर ली वो अलग बात है, लेकिन अमलन प्रैक्टिकली आप देखें तो झूठ चूंकि शैतान ने इन्वेंट किया है। और शिया हम किसको कहें? लुगवी माना, शिया का लुगवी माना, शिया का डिक्शनरी माना ये फॉलोअर पैरोकार। तो डिक्शनरी एतबार से जो झूठ बोलता है वो शैतान का शिया है, शैतान का फॉलोअर है वो। सही है, इंशाल्लाह कल हम शैतान के ऊपर मजीद बात करेंगे। ठीक है, मुमकिन है, इंशाल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह। और इंसान के जो वजूदी मरातब है, इंसान का जो वजूद है उसके लेवल्स क्या हैं, बहुत बातें बहुत बातें बहुत ज़्यादा हैं। आप दुआ करें कि इस माह रमज़ान में इस पूरे कोर्स को हम कवर कर पाएँ, कि उम्मीद है 25-26 रमज़ान तक ये कोर्स कवर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व
बरकातुहू। وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على